नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और 15 मिनट के इस कार्यक्रम में आज हमसे खेल गतिविधियों पर, खेल खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सचिन कुमार। सचिन नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
धन्यवाद हिमांशु।
सचिन, सबसे पहले आज की नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर और उसके बाद इन तमाम खेल खबरों पर आपसे करेंगे हम विस्तार से चर्चा।
जी बिल्कुल।
तो आज की हेडलाइंस हैं, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच ककेप्रा में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है, भारत को शुरुआती झटके। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी कल से बिहार के राजगीर में शुरू हो रही है। नई दिल्ली में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत ने आज 1 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता और अमरीका की कोको गॉफ ने ओलंपिक चैंपियन चीन की झेन किनवेन को हराकर WTA फाइनल्स में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच ककेप्रा में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 5 विकेट पर 73 रन बना लिए थे और समय जो बल्लेबाज क्रीज पर हैं, हार्दिक पांड्या 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनका साथ देने अब से कुछ देर पहले रिंकू सिंह आए हैं और जो लास्ट विकेट जो भारत का गिरा था अक्षर पटेल के रूप में गिरा था, 27 रन उन्होंने खेले, 21 गेंदों का सामना किया और भारत को ये 5वां झटका लगा है। जो पहला मैच भारत ने जीता था, 1-0 की बढ़त बनाई थी 4 मैचों की श्रृंखला में, शुक्रवार को मेजबान टीम को 61 रन से उन्होंने हराया था। लगता है कि आज जो है दक्षिण अफ्रीका, खासतौर से जो गेंदबाज हैं, उन्होंने अपने कप्तान को टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का जो फैसला, उस पर भरोसा विश्वास पर खड़े भी उतरे हैं और पहली हार का बदला चुकता करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
दोनों ही, मुझे लग रहा है आप जो बातें कह रहे हैं दोनों ही सही जा रही हैं
जी,
क्योंकि देखिए जो अभी तक का जो हाल है इस मैच का वो यही बताता है कि उनके गेंदबाज शुरू से ही हावी रहे और हमारी स्थिति ये रही है कि अगर मुश्किल से 120-125 रन भी बन जाए इस मैच में तो बहुत बड़ी बात होगी।
जी बिल्कुल। अगर पहले मैच की बात करें तो शतकवीर थे संजू सैमसन, उन्होंने लगातार 2 T20 मैचेस में शतक बनाने की उपलब्धि भी हासिल की थी, लेकिन इस बार उन्होंने निराश किया। 3 गेंदें उन्होंने खेली लेकिन खाता नहीं खोल सके।
बस यही एक मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अंतर आज पैदा हुआ है कि संजू सैमसन चले ही नहीं, वो खाता भी नहीं खोल सके अपना। 2 शतक के बाद 0 उनके बल्ले से आया तो ये, और पहले मैच में भी हिमांशु ये देखने वाली बात थी कि ना शीर्ष क्रम ठीक से चला था।
जी बिल्कुल।
और ना मध्यक्रम
रहा था। और अगर हम पिछले मैच की बात करें तो तिलक वर्मा सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे, 33 रन उन्होंने बनाए थे, 20 रन का उन्होंने योगदान दिया है और आज के मैच में अब तक अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा 27 रन अक्षर पटेल के बल्ले से आए हैं। भारत का, जैसे आपने जिक्र किया, जो शुक्रवार को मैच हुआ था उसमें डरबन में, उसमें पहला मैच अगर संजू सैमसन के रन को हटा दें 202 में से 107 रन, तो भारत का शीर्ष क्रम, मध्यक्रम और निचला मध्यक्रम जिसे कहते हैं
जी,
वो कोई भी नहीं चले, कोई भी बल्लेबाज ज्यादा साबित नहीं कर पाए।
हाँ, वही सबसे बड़ा अंतर वही रहा कि उस मैच में, उसके बाद हमारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था
जी,
तो पूरा श्रेय जो है सैमसन के बाद उस मैच में गेंदबाजों को जाता है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीकी टीम को इतने कम स्कोर
पे, और रेड्डी ने 3-3 विकेट
जी बिल्कुल, तो वो एक स्पिनर भी बहुत अच्छा खेले और हमारी तेज गेंदबाजों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो जिसकी वजह से वो हमें जो जीत हासिल हुई और लगातार भारत जो है अपनी जीत का क्रम जो एक बनाए चला आ रहा है उसको इस श्रृंखला में भी उसने कम से कम जीत के साथ शुरुआत करी।
बहरहाल 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 76 रन बोर्ड पर हैं, 5 विकेट भारत के जा चुके हैं। लास्ट रिकॉग्नाइज्ड जो बैट्समैन हैं हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह, ये दोनों क्रीज पर हैं। अगर यहां से जो 91 गेंदे भारत को अभी और खेलनी है, 42 गेंदे भारत को और अभी खेलनी है, 7 ओवर बचे हैं, इन 42 गेंदों में इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि भारत क्या एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाता है।
बस वही है हिमांशु की, अब देखिए कि अगर वहां की परिस्थितियां जिस तरीके से बन रही हैं तो जो भी बल्लेबाज अपने को तेजी से अगर रन बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो आउट हो जा रहा है, तो ये भी एक चीज देखने वाली है कि अगर ये टिक के खेलते हैं तो ज्यादा गेंदे नहीं है और अगर उन गेंदों पर रन नहीं बने तो हमारा स्कोर उस समय उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकता, जिसको हम कह सकते हैं कि हमने एक चुनौतीपूर्ण स्कोर उनको दिया जिसके जिससे कि हमारे गेंदबाज उनको रोकने में सक्षम हो।
बहरहाल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है 13 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब चलते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच के लिए 13 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। पहला मैच 22 नवम्बर से पर्थ में खेला जाएगा। एक रिपोर्ट।
फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच के लिए टीम का ऐलान किया है। उसने टीम में 2 नए खिलाड़ियों को मौका दिया है, जिनमें से एक का टेस्ट डेब्यू होना तय माना जा रहा है। नेथन मैक्सवीनी और जोश इंग्लिस को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। 13 सदस्यीय टीम में ये दोनों ही नए चेहरे हैं। 25 साल के सलामी बल्लेबाज नेथन मैक्सवीनी ओपनिंग की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। उनके चुने जाने की पूरी उम्मीद थी। उन्होंने इंडिया ए के खिलाफ 2 मैचों की गैर आधिकारिक टेस्ट श्रृंखला में दूसरे दावेदारों के मुकाबले कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन किया था। कप्तान पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिशेल स्टार्क के साथ तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे, जबकि तेज गेंदबाजों में स्कॉट बॉलेंड टीम में जगह बना पाने में कामयाब रहे हैं। नेथन लियोन टीम में एकमात्र विशेषज्ञ स्पिन विकल्प हैं, जबकि मार्नस लबुशेन और ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी स्पिन गेंदबाजी के विकल्प के रूप में मौजूद रहेंगे। एलेक्स कैरी विकेटकीपर होंगे। जोश इंग्लिस का चयन सिर्फ बैकअप विकेटकीपर के तौर पर नहीं बल्कि रिजर्व बल्लेबाज के तौर पर किया गया है, क्योंकि उनकी दोहरी क्षमताएं उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। विनय सक्सेना, स्पोर्ट्स कैन।
मैच 22 नवंबर से पर्थ में, 13 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। और जैसा कि गैर आधिकारिक जो नॉन ऑफिशियल क्रिकेट टेस्ट मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कप्तान भी थे नेथन मैक्सवीनी और उनका चयन कुछ आश्चर्यजनक भी नहीं रहा है।
नहीं, उनको तो चुना जाना ही था, क्योंकि इन लोगों को अंदाजा है कि भाई अब हमें किन खिलाड़ियों को अब आगे लेके आना है। और हालांकि ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण भी होने वाली है, क्योंकि 5 टेस्ट मैच हैं और इंडिया के ऊपर एक दबाव भी है। और गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी हालांकि 10 साल से हमारे पास है, लेकिन अब निश्चित तौर पर मेजबान चाहेंगे कि हम अपने घर में खेल रहे हैं तो ट्रॉफी वापस आए। और हमारे ऊपर हमने चूंकि 0-3 से एक श्रृंखला गंवाई है,
बिल्कुल डबल प्रेशर हमारे ऊपर रहेगा कि न्यूजीलैंड के साथ हम क्लीन स्वीप हुए हैं, न्यूजीलैंड ने क्लीन स्वीप किया है 3-0 से। और दूसरा होम एडवांटेज रहेगा ऑस्ट्रेलिया के पास। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और जो पाकिस्तान के बीच में अभी वनडे सीरीज हुई है उसमें 2-1 से जीती है पाकिस्तान। 22 साल के बाद उन्होंने ये जीत हासिल करी है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर भारतीय टीम की बात करें जो इंडिया ये टीम खेली थी, उसमें कुछ ऐसे प्रोमिनेंट आपको बल्लेबाज नजर आए या गेंदबाज नजर आए जो भविष्य में टीम के साथ जुड़ सकते हैं, या जैसा कि सुना जा रहा है कि रोहित शर्मा कपल ऑफ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो उनके रिप्लेसमेंट में एज ए ओपनर उनको लिया जा सकता है?
अभी देखिए, जो खिलाड़ी यहाँ से भेजे गए थे इस हिसाब से कि वो जो वहां पे जो टेस्ट सीरीज होगी तो उनको आजमाया जा सकता है। जैसे अभिमन्यु ईश्वरन की आप बात करें या केएल राहुल जो एक अनुभवी बल्लेबाज हैं, लेकिन उनको सिर्फ इसलिए भेजा गया था कि वो अपनी फॉर्म हासिल कर लें, एक लॉन्ग फॉर्मेट का मैच वहां जाके खेलें इस सीरीज से पहले। लेकिन
सुदर्शन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया,
लेकिन इन दोनों ने देखिए बहुत कोई अच्छा किया नहीं है और बहुत निराश किया है। लेकिन ध्रुव जुरेल ने जरूर वहां पे कुछ विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं,
68 रन बनाए थे
जी बिल्कुल, और उन पे निगाह रहेगी। और भी एक आध खेल जैसे साई सुदर्शन का जैसे आपने जिक्र किया, प्रसिद्ध कृष्णा का जैसे एक नाम लिया जा सकता है जी, तो कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक छाप छोड़ने की कोशिश करी है। बाकी ये सीरीज चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कठिन होने वाली है, उनके ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों में खेलना है और 5 टेस्ट खेले जाएंगे तो निश्चित तौर पे भारत को कुछ ऐसे खिलाड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी कि लंबी सीरीज में जैसा हम सब जानते हैं कि फिटनेस की भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास रिजर्व खिलाड़ियों का एक बेंच होना चाहिए।
उधर पर्थ में 3rd और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। एक रिपोर्ट।
पाकिस्तान ने आज पर्थ स्टेडियम में 23 ओवर शेष रहते 8 विकेट से जीत दर्ज करके मौजूदा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पर यादगार जीत दर्ज की और 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत ली। इस जीत ने कप्तान के रूप में अपनी पहली सीरीज में मोहम्मद रिजवान के लिए एक विजयी शुरुआत का आगाज किया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने वनडे सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया को परेशान करना जारी रखा और सीरीज के निर्णायक मैच में भी यही हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए पाक तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम को 79 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद पारी में 18 से अधिक ओवर शेष रहते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम 140 रन पर सिमट गई। शाहीन शाह, अफरीदी और नसीम शाह ने 3-3 विकेट लिए, जबकि फॉर्म में चल रहे हारिस राउफ ने 24 रन देकर 2 विकेट लिए। 141 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान के दोनों ओपनर सईम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने 84 रन की मजबूत शुरुआत दी। सईम ने 42 और शफीक ने 37 रन की पारी खेली। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने नाबाद 30 और बाबर आजम ने 28 रन बनाए। दोनों के बीच नाबाद 58 रन की साझेदारी हुई। ऑस्ट्रेलिया के लिए दोनों विकेट लॉन्स मॉरिस ने लिए। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत लिया है। दांबुला में कल पहले मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 135 रन पर आउट हो गई। जवाब में श्रीलंका ने 19 ओवर में 6 विकेट पर 140 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी कल से बिहार के राजगीर में शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शाम इस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें भारत समेत 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन मैच कल दोपहर 12:15 जापान और कोरिया के बीच खेला जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत सहित 6 एशियाई देशों की टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला भारत और मलेशिया के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम इस वर्ष पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही थी, ऐसे में वो साल का अंत यादगार तरीके से करना चाहेगी। सलीमा टेटे के नेतृत्व में युवा प्रतिभाओं के साथ अनुभवी खिलाड़ियों की मिश्रित टीम है। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत को 5 अन्य देशों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिसमें मौजूदा ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। टीम के कोच हरेंद्र सिंह का कहना है कि टीम पूरी तरह से तैयार है और हर मैच के लिए रणनीति बनाई जा चुकी है। खिलाड़ियों के साथ मैच की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है और टीम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। विनय सक्सेना, स्पोर्ट्स कैन।
जो बिल्कुल 6 टीमें भाग लेंगी, इसमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और कोरिया हैं। और किस तरह का ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, खासतौर पर भारत नई कप्तान है सलीमा टेटे, और जो चुनौतियां एशियाई स्तर पर भारतीय टीम को मिलने वाली है?
निश्चित तौर पे देखिए, एक नई शुरुआत है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक के लिए तो क्वालिफाई कर नहीं सकी टीम
जी।
तो अब उससे आगे बढ़ने का टाइम है भारतीय हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम के सामने। हरेंद्र सिंह अब कोच हैं टीम के, और वो एक अनुभवी कोच रहे हैं। उन्होंने कई कई भारत की जूनियर टीम को भी कोच किया है, सीनियर टीम के साथ भी वो जुड़े रहे हैं, इस बार महिला टीम के साथ हैं। तो निश्चित तौर पे कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अब ये भी जानने वाली बात है कि जब FIH प्रो हॉकी लीग हो रही थी, उसमें 16 मैच खेले भारतीय महिला हॉकी टीम ने, 13 गंवा दिए। तो जाहिर सी बात है कि अब वो सब चीजें बहुत खराब रही। अब उससे आगे जाना है, अगर आपको जो है अगले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है तो टीम को यहीं से बनाने की जरूरत होगी। और ये खिताब जो है पिछली बार भारत ने अपने ही धरती पे जीता था, तो उसके लिए ये भी चुनौती है कि हम इस खिताब को बरकरार रख सकें। और जैसा कि अभी जिक्र हुआ, इसमें चीन जैसी मजबूत टीमें भी हैं, चीन, कोरिया, चीन ओलंपिक का रजत पदक विजेता है,
और चीन के जो विकेट कीपर है उनको 2 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का बेस्ट गोलकीपर महिला के वर्ग में उनको मिला है। 21 सेव्स उन्होंने किए थे पेरिस ओलंपिक्स में।
हाँ, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। और लेकिन एक अच्छी बात बस यही है कि मलेशिया के साथ हमारा पहला मुकाबला, जिसके खिलाफ हमारा बहुत मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत दबदबे वाला मामला रहा है। हमने उससे जो पिछले 3 मैच हैं वो काफी बड़े अंतर से जीते हैं। तो शुरुआत तो मुझे लगता है कि भारतीय महिला टीम एक अच्छी करने में सफल रहेगी। अब देखना यह है कि उसके आगे उसको किस तरह से वो बरकरार रखती है।
टेबल टेनिस में भारत की सिंड्रेला दास ने इटली के लिग्नानो में WTT यूथ कंटेंडर में U15 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने कल फाइनल में भारत की दिव्यांशी भौमिक को 3-2 से हराया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज नई दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने खेल के माध्यम से देश को गौरवान्वित कर रहे पुलिसकर्मियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देशवासियों की रुचि खेलों में बढ़ रही है और सरकार एथलीटों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी प्रतिबद्ध है।
हमारे देश में खेलों के प्रति जो सोच पहले थी, उसमें अब न केवल परिवर्तन आया है, बल्कि खेलों के प्रति लोगों का रुझान भी बदला है। बीते 1 दशक में देश के अंदर इसके लिए पहले से कहीं बेहतर विश्व स्तरीय ढांचा तैयार भी किया गया है। इसके बावजूद इस वक्त विश्व स्तर के खिलाड़ी हमारे यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। खेल न केवल आपसी मेलजोल के लिए जरूरी है, बल्कि यह आपसी सौहार्द को भी बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
रेंज में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत ने आज 1 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक मिले। महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक मिला, जबकि पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक हासिल हुआ। उधर अमरीका की युवा टेनिस स्टार कोको गॉफ ने ओलंपिक चैंपियन चीन की झेंग किनवेन को हराकर पहली बार WTA फाइनल्स में महिला सिंगल्स खिताब जीता। 2014 में सेरेना विलियम्स के बाद ये खिताब जीतने वाली वे पहली अमरीकी खिलाड़ी हैं। बहरहाल समय नहीं है, हम आगे खबरों को जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन को आमंत्रित किया था। सचिन, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद हिमांशु।
बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।